रविवार के राधा गोकुल आनंद मंदिर के सत्संग कार्यक्रम के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले दो तीन दिनों से बलराम जी की कथाएं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को बलराम जयंती का महोत्सव था और आज बलराम जी की कथा जारी रखेंगे। चार प्रवचन हो चुके, अब ये आखिरी वाला। अब तक ये चर्चा की है कि बलराम जी का आविर्भाव कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बलराम जी कौन है, बलराम तत्व क्या है, बलराम जी किस प्रकार से कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं हर रस में, हर लीला में। और हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों साथ में, पहले तो नंद गोकुल में, फिर वृंदावन में, फिर नंदग्राम में और फिर जाकर मथुरा में कैसे लीला करते थे। सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आता है और इन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने से हृदय की अग्नि, कौन सी अग्नि है ये, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन छह प्रकार की अग्नियां जो हमारे हृदय में प्रज्वलित रूप से जल रही हैं, वो तृप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो मथुरा लीला तक हम पहुंच गए थे। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के सारे निवासियों को अपने नए धाम में, द्वारका धाम में स्थानांतरित कर दिया और खुद वो और बलराम जी वहां रहने गए उनके साथ में, और वहां पर भी सुंदर सुंदर लीलाएं करते रहे। और जब वहां सारा यदुकुल बस गया द्वारका धाम में, तो बलराम जी का विवाह हुआ रेवती से, आज सुबह हमने देखा। और फिर आगे चल के कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और रुक्मिणी के बाद में फिर और 7 पठरानियां आईं और फिर भौमासुर नाम के असुर का वध करके उन्होंने जो 16,100 राजकन्याओं का भरण करके उनको बंदी कर दिया था, उनको मुक्त करके उनसे भी विवाह कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पठरानियां हुई और फिर उनके संतान हुए और उनके बच्चों के भी बच्चे हुए और इस प्रकार से यदुकुल की वृद्धि होते गई होते गई, बहुत बड़ी संख्या बन गई और यदुकुल सबसे शक्तिशाली प्रबल कुल सारे पृथ्वीलोक पर बन गया। उधर असुरों की कोई कमी नहीं रही, जैसे वृंदावन में कृष्ण और बलराम और ब्रजवासियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए असुर प्राय आया करते थे, तो उसी प्रकार से मथुरा में भी और द्वारका में भी असुरों ने कृष्ण भगवान का, बलराम जी का पीछा नहीं छोड़ा। तो हम पढ़ते हैं कि द्वारका में आने के बाद में भी कृष्ण भगवान ने रुक्मी के साथ युद्ध किया, हरा दिया और फिर आगे चल के पौंड्रक नाम के राजा को भी हरा दिया जो कि मिथ्या वासुदेव बनने का प्रयास कर रहा था और ये कृष्ण भगवान पे इल्जाम लगा रहा था कि तुम मिथ्या वासुदेव हो, मैं सच्चा वासुदेव हूं। तो पौंड्रक को हरा दिया। और उधर जैसे यदुकुल अपने जीवन में मग्न थे, बलराम जी को खबर पहुंची कि उधर दूर हस्तिनापुर में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होने की संभावना बहुत तेज है, युद्ध होने ही वाली है और कृष्ण ने भी प्रयत्न किया है कि युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि युद्ध रोका जा सकता है। और जब बलराम जी को पता चला कि ना तो वो पांडव की ओर से ना तो कौरव की ओर से युद्ध कर सकते हैं, वो केवल मध्यस्थ के रूप में रह सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि युद्ध में अगर जब मैं शामिल नहीं हो सकता तो यहां मुझे रहने से क्या फायदा है, इससे अच्छा ये होगा कि मैं तीर्थ यात्रा में चले जाऊं। तो बलराम जी ने ठीक वैसे ही किया। सबसे पहले द्वारका के सबसे नजदीक जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है प्रभास क्षेत्र, वहां पर गए जो समुद्र के किनारे में तट पे है, और वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, नाना प्रकार के यज्ञ क्रिया किए, देवताओं को पितरों को संतुष्ट किया, दान दिया, जैसे कि अक्सर धार्मिक लोग किया करते हैं तीर्थ स्थान में जाकर। और फिर वहां से सरस्वती नदी के तट पर जो भी तीर्थ स्थान थे उनमें चले, और चलते चलते आगे बढ़ते हुए जो भी पूरब की ओर से तीर्थ स्थान आए वो वहां उनके ऊपर चलते गए। चलते चलते फिर और पूरब की ओर गए और गंगा जमुना के तट पे भी जो तीर्थ स्थान थे उनके वहां भी भ्रमण किया, और ऐसे भ्रमण करते करते वो नैमिषारण्य पहुंच गए। नैमिषारण्य में बहुत लंबे समय से ऋषिगण मुनिगण एकत्र हुए थे यज्ञ करने के लिए, सारे संसार के लोगों के कल्याण के लिए। नैमिषारण्य में हमेशा यज्ञ न कोई ना कोई ऐसे धार्मिक कार्य अनुष्ठान हुआ करते हैं जन कल्याण के लिए। तो वहां एक सभा चल रही थी और उस सभा में बहुत सारे ऋषि मुनिगण संत महात्मा बैठे हुए थे, और वहां पे पुराणों की कथा चल रही थी। और जब बलराम जी वहां पहुंचे तो बलराम जी को देखकर सारे वहां उपस्थित जो भी ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए सम्मान देने के लिए, क्योंकि खुद बलराम जी तो स्वयं भगवान हैं, और ये सारे ऋषि मुनिगण जानते थे, बलराम जी को पहचान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। और थोड़े जो वहां ऋषि मुनि थे उनको बलराम जी ने आशीर्वाद दिया, और थोड़े जो उनसे बुजुर्ग थे उन्होंने खड़े होकर बलराम जी का सम्मान किया, लेकिन उम्र में ज्यादा होने की वजह से उन्होंने बलराम जी को भी आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए वहां उस पावन वातावरण में आने के बाद में। लेकिन एक बात उनको खटकी वहां पर, उन्होंने देखा कि व्यासासन पे जो बैठे हुए हैं उनके हृदय में कुछ कलमश नजर आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहां सभा में आया सभी बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषिगण सब उठे मेरा स्वागत करने के लिए, मुझे सम्मान करने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति जिनका नाम है रोमहर्षण सूत ये उठे नहीं, अपने व्यासासन पर बैठे रहे। तो इनके हृदय में अवश्य गर्व है, अभिमान घमंड है। तो जब बलराम जी ने ऐसे रोमहर्षण सूत का व्यवहार देखा तो तुरंत वो रोमहर्षण सूत के बारे में सोचने लगे कि ये जो रोमहर्षण हैं ये सूत परिवार के हैं। सूत परिवार मतलब क्या है? वैसे देखिए वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण वर्ण में आपस में ही अंदर विवाह हुआ करता था, उसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण में और वैश्य वर्ण में शूद्र वर्ण में अंदर वर्ण के भीतर ही विवाह हुआ करती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक वर्ण का पुरुष किसी दूसरे वर्ण के स्त्री से विवाह भी कर लेता था। तो ऐसे जो विवाह होते थे उनको अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो दो प्रकार के विवाह बताए गए हैं शास्त्रों में, एक को कहते हैं अनुलोम, दूसरे को कहते हैं प्रतिलोम। अनुलोम मतलब जो उचित होना चाहिए, जो पुरुष है वह ऊंचे वर्ण का होना चाहिए और जो उसकी स्त्री है वो नीचे योनि की होनी चाहिए। नीच वर्ण के होनी चाहिए। सबसे बेहतर यह है कि दोनों एक ही वर्ण के रहें। अगर ऐसा नहीं है, अगर पति पत्नी अलग वर्ण से हो, तो जिस वर्ण में पति है उस वर्ण से जो नीचा वर्ण है उस वर्ण की पत्नी होनी चाहिए। तो इसको अनुलोम कहते हैं। सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण स्त्री से शायद विवाह कर सकता है, क्षत्रिय स्त्री से विवाह कर सकता है, वैश्य स्त्री से भी विवाह कर सकता है। तो इसको अनुलोम कहते हैं, अनुलोम विवाह। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर लेता है। जैसे कि आपने देखा कि श्रीमद् भागवत में कथा आती है महाराज ययाति की। महाराज ययाति ने, जो कि क्षत्रिय थे, शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे उनकी कन्या देवयानी से विवाह किया। तो ये प्रतिलोम विवाह हो गया, मतलब पुरुष एक वर्ण के और स्त्री उससे ऊपर के वर्ण के। तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। वैसे तो प्रतिलोम विवाह उचित नहीं समझा जाता था, ठीक नहीं समझा जाता था, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे प्राय दुर्लभ ही ऐसे कई हुआ करते थे। तो जब कोई क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण स्त्री से विवाह करता था, जो उनके जो संतान होते थे, फिर वो परिवार को सूत कहते थे। ऐसे प्रतिलोम विवाह को, ऐसे प्रतिलोम परिवार को सूत परिवार कहते थे। तो पूरी तरह से ब्राह्मण भी नहीं हुए, पूरी तरह से क्षत्रिय भी नहीं हुए। तो बलराम जी सोचने लगे कि ये तो पूरी तरह से ब्राह्मण नहीं है, इनके पिता तो क्षत्रिय हैं। कबूल करता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन यहां सब सभा में सब शुद्ध ब्राह्मण बैठे हैं, कम से कम ये तो पूरी तरह से ब्राह्मण नहीं है। तो रोमहर्षण सूत के लिए ये उचित नहीं था कि ऐसे शुद्ध ब्राह्मणों की सभा में वो वहां ऊपर बैठ के इनको प्रवचन दें। ये सब ये उचित नहीं है कि आप सबके बीच में हम यहां बैठ के बोलें, लेकिन फिर भी बिठाया गया है तो बोल रहे हैं। तो बलराम जी सोच रहे थे कि ऐसे ब्राह्मणों की सभा में रोमहर्षण सूत का वहां ऊपर बैठना भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये उनका घमंड है, उनको नहीं बैठना चाहिए था। और अगर भी ब्राह्मणों ने ही उनको ऊपर बिठा दिया और कहा कि हमारा निवेदन है कि आप ऊपर बैठिए और प्रवचन कीजिए, फिर भी रोमहर्षण सूत को कम से कम खड़ा तो होना चाहिए था। कम से कम व्यासासन से उतरे नहीं, तो कम से कम वहां बैठे बैठे तो खड़े होकर सम्मान कर सकते थे बलराम जी का, क्योंकि बलराम जी तो स्वयं भगवान है। वैसे जब व्यासासन पर व्यक्ति कोई बैठ जाता है और अगर कोई महान व्यक्ति भी आते हैं, तो यह उचित नहीं होता कि वो व्यासासन से उठे। ऐसी प्रथा है, कभी कभी सम्मान के तौर से उठ जाते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है। लेकिन बलराम जी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बलराम जी तो स्वयं भगवान है, तो इसलिए रोमहर्षण सूत को उठना ही चाहिए था, या कम से कम सम्मान तो करना चाहिए था। उन्होंने देखा कि यह ठीक नहीं है, इसके हृदय में तो अवश्य घमंड है। तो जब कोई व्यक्ति को ब्राह्मण का पद मिल जाता है, जब उसका जन्म ब्राह्मण का नहीं होता है, तो उसे ब्राह्मण की तरह व्यवहार भी करना चाहिए। देखिए वर्णाश्रम धर्म में यह बताया जाता है कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केवल अपने जन्म से नहीं पहचाने जाते, लेकिन अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, अपने गुणों से पहचाने जाते हैं। अगर हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन हमारे गुण, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार एक शूद्र की तरह रहा, तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाते। उसी प्रकार से अगर क्षत्रिय परिवार में हमारा जन्म हुआ, लेकिन क्षत्रिय की तरह हमें, हम वीर नहीं हैं, युद्ध करने में साहस नहीं है, वो जोश नहीं है, तो फिर हम क्षत्रिय नहीं कहलाते। तो ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, चाहे उसे शूद्र जन्म में, शूद्र परिवार में जन्म लिया हो, क्षत्रिय परिवार में या तो वैश्य परिवार में, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है अगर उसके अंदर ऐसे गुण है तो। लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला भी अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो वो ब्रह्म बंधु कहलाता है, ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मणों के बंधु, अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद ब्राह्मण बनने के लिए योग्य नहीं है। तो अगर ऐसे कोई नीच वर्ण का, निम्न श्रेणी के वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए उचित है कि ब्राह्मण की तरह व्यवहार करे, अगर वो नहीं करे तो उसे उस पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो बलराम जी सोच रहे थे कि रोमहर्षण सूत तो वैसे ब्राह्मण नहीं है और उनको ब्राह्मण का पद दिया गया है, सारे वरिष्ठ से वरिष्ठ ब्राह्मणों को वो प्रवचन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और ऐसे ब्राह्मण के हृदय में इतना घमंड, ये तो ठीक नहीं है। जब वास्तव में कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है तो उसे सौम्य व्यवहार का स्वभाव का होना चाहिए, हृदय निर्मल होना चाहिए, उसे विनीत होना चाहिए, और इस प्रकार से नम्रता, ये ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। आत्म साक्षात्कार पुरुष या ज्ञानी पुरुष का लक्षण यह होता है सबसे पहला कि वो नम्र होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान को जान लेता है तो भगवान की भक्ति में लग जाता है और नम्र बन जाता है। सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष वो है जो भगवान को जान लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। कि जो व्यक्ति असम्मूढ़ हो मतलब बिना कोई संशय के जान लेता है कि मैं स्वयं भगवान हूं, वो सर्वविद सब कुछ जान लेता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, और इसलिए सर्वभावेन अपने पूरे हृदय से वो भगवान के भजन में लग जाता है। तो बलराम जी जब आए उस सभा में तो इन सब चीजों के बारे में सोच रहे थे, इन सारी ये सारी बातें बलराम जी के मन में घूम रही थी, और उन्होंने देखा कि ये रोमहर्षण सूत जो है इसका व्यवहार ठीक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, इसलिए इसे दंड देना होगा। हालांकि मुझे युद्ध नहीं करना था, इसलिए मैं द्वारका से चले आया, हस्तिनापुर भी नहीं गया, कुरुक्षेत्र भी नहीं गया, तो यहां आकर मैं इसे मृत्यु दंड दूं, यह भी उचित है क्या? लेकिन फिर सोचने लगे, हाँ उचित है, क्योंकि मैं यहां धर्म की संस्थापना करने आया हूं, दुष्टों का नाश करने आया हूं और साधुओं की रक्षा करने आया हूं, और खास करके ऐसे लोगों को मैं दंड देना चाहता हूं जो अंदर से दुष्ट हैं, अशुद्ध हैं, लेकिन बाहर से बड़े धार्मिक और ज्ञानी पेश करते हैं अपने आप को, और ये रोमहर्षण सूत ऐसे ही है, इसलिए मुझे रोमहर्षण सूत को मृत्यु दंड देना चाहिए। तो बलराम जी ने क्या किया, कुश जो तृण होता है, जो घास होता है, एक पत्ते को उठाया और एक पत्ते से रोमहर्षण सूत का स्पर्श किया, और इतना बड़ा उसका धक्का लगा रोमहर्षण सूत को कि रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। हम अगर जितने भी घास उठाएं, दूसरे को मारे, कुछ नहीं होगा, उल्टा हमारा हाथ दर्द करने लगेगा, लेकिन दूसरे का बाल भी नहीं हिलेगा। लेकिन बलराम जी ने क्या किया, एक घास कुश ग्रास के तिनके से बस उन्होंने स्पर्श किया रोमहर्षण सूत को, और रोमहर्षण सूत मर गए, वहीं के वहीं व्यासासन पर बैठे बैठे ही उनकी मृत्यु हो गई। और वहां सारे भरी सभा में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो सारे ब्राह्मणों ने फिर निवेदन किया बलराम जी से कि आप तो स्वयं भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप स्वराट हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, वेदों के नियम आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम सबका मत है कि आपने जो किया सो ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने रोमहर्षण सूत को ऊपर बिठाया था, वो खुद नहीं बैठे थे। और दूसरी बात, ये प्रथा है कि जब कोई व्यासासन के ऊपर बैठता है तो भले कोई भी आए वो उठता नहीं है, उठने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके अलावा हमने रोमहर्षण सूत को आशीर्वाद दिया था, एक वरदान दिया था कि उसकी लंबी आयु रहेगी। अभी देखिए क्या हो गया है, आपके कार्य से उनकी मृत्यु हो गई और हम झूठे ठहरे, लेकिन फिर भी आप भगवान हैं तो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा निवेदन आपसे ये है कि दूसरों के लिए उदाहरण अच्छी तरह से पेश करने के लिए, एक आदर्श सामने रखने के लिए आपको इस कार्य का प्रायश्चित करना चाहिए। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कैसे आपको प्रायश्चित करना होगा, लेकिन इतना ही आपसे निवेदन करेंगे कि प्रायश्चित आप कीजिए। तो उस समय बलराम जी ने ये सब बातें अच्छी तरह से सुन ली और कहने लगे, आप जो कह रहे हैं वो सही है, वास्तव में मैंने जो किया उसे ठीक किया, और कोई करता तो ये ठीक नहीं होता। मैंने किया, मैं भगवान हूं इसलिए वो ठीक है, दूसरा कोई कर लेता तो ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी बात मुझे मंजूर है। तो आग अगर आप चाहें तो मैं रोमहर्षण सूत को फिर से जीवित कर दूंगा और लंबी आयु दे दूंगा, शक्तिशाली शरीर दे दूंगा, उसकी इंद्रियां भी बड़े तेज होंगे, तो आप चाहें तो मैं ऐसे कर सकता हूं। तो यह है भगवान। तो कोई और अगर उनकी हत्या करता तो शायद ऐसे रोमहर्षण सूत को फिर से जीवित करने की शक्ति उसके अंदर न होती। रिंग बलराम जी तो भगवान है, तो उनके लिए कौन सा कार्य असंभव है। तो उस समय ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, अभी आपने यह अद्भुत तरह से यह हत्या की, जिस ढंग से पहले किसी ने किसी की हत्या नहीं की है, वैसे आपने एक कुछ घास से आपने इसकी हत्या की है, तो रोमहर्षण सूत का मृत्यु होना यह आपकी इच्छा है, तो इसलिए हम आपकी इच्छा का भंग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन साथ साथ हम इतना ही कहते हैं कि हमने जो उनको वरदान दिया था वो अगर झूठा ठहर जाए तो ब्राह्मण जो वर्ण है वो झूठा ठहराएगा, फिर ब्राह्मणों के वरदान का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो आप इसका कोई सुझाव निकालो। तो देखिए कैसा प्रस्ताव रखा ब्राह्मणों ने बलराम जी के सामने कि आपने उनको मारा तो हम उनको जीवित नहीं करना चाहते, लेकिन हमने उनको लंबी आयु दी है तो वो भी रहना चाहिए। तो ये भी है, वो भी है, कैसे हो सकता है? अगर हमारे सामने कोई ऐसे प्रस्ताव रखता तो हम तो भ्रमित हो जाते कि क्या किया जा सकता है, इसका कोई उपाय नहीं है। बलराम जी तो भगवान है, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, इसका सुझाव मैं बताता हूं। सुझाव यह है कि जो पुत्र होता है वो पिता के शरीर से आता है, इसलिए वही पिता का विस्तारित रूप ही माना जाता है। तो मैं ऐसा करूंगा कि जो वरदान आपने रोमहर्षण सूत को दिया था वही वरदान मैं रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा सूत को प्रदान करता हूं, ताकि उग्रश्रवा सूत की आयु लंबी होगी, शारीरिक बल भी बहुत रहेगा, इंद्रियां भी तेज रहेंगी लंबे समय तक, और अपने पिता के स्थान में अगर उग्रश्रवा सूत बैठ जाते हैं व्यासासन पर प्रवचन देने के लिए, तो इसका मतलब है कि पति की पति ही बैठा है, रोमहर्षण सूत ही बैठे हैं, क्योंकि पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, पिता के शरीर से ही आता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मेरी इच्छा भी पूरी होगी और आपका जो वरदान और आशीर्वाद है वो भी झूठा नहीं ठहराएगा। तो इस प्रकार से बलराम जी ने उग्रश्रवा सूत को व्यासासन पर बिठाया। उग्रश्रवा सूत वही है सूत गोस्वामी जिनका वर्णन भागवत में आता है, वही सूत गोस्वामी जो कि गंगा जी के तट पर परीक्षित महाराज के श्रीमद् भागवत, सुखदेव गोस्वामी के श्रीमद् भागवत के प्रवचन के समय उस सभा में बैठे हुए थे। तो फिर आगे चल के वही सूत गोस्वामी ने ये कथा सारे ऋषि मुनियों को सुनाई जिनके प्रमुख थे शौनक मुनि। तो ये जब सुना ऋषि मुनियों ने तो वो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन कहा कि आपको प्रायश्चित तो करना चाहिए। तो बलराम जी ने कहा, ठीक है, मैं प्रायश्चित करूंगा। तो पहले वो गए, आगे चलते प्रयाग गए, प्रयाग वहां त्रिवेणी संगम में स्नान किया जहां सरस्वती जमुना गंगा जी का संगम होता है, और वहां स्नान करने के पश्चात फिर और आगे चले गए, आगे चल के गंडक नाम के जगह में जो कि गोमती नदी के तट पर है, उसके पहले सरयू नदी के तट पे जो भी तीर्थ स्थान थे वहां गए, और उसके बाद में कौशिकी नदी में भी गए और भ्रमण करते करते दक्षिण की ओर आए, दक्षिण की ओर बिहार प्रांत में सोन नदी जो है उसके तट में जो भी तीर्थ स्थान थे वहां गए। वहां जाकर फिर वो गए गया से गए फिर और दक्षिण दिशा में गंगा सागर में, जहां गंगा और सागर का मिलन होता है। लेकिन इसके पहले जब बलराम जी ने ऋषि मुनियों से कहा था कि मैं क्या प्रायश्चित करूं आप बताओ, एक साधारण क्षत्रिय के तरह वो अभी ब्राह्मणों से पूछ रहे थे कि आप मेरे लिए प्रायश्चित बताओ। तो उस समय ऋषि मुनियों ने कहा कि यहां पर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हर बार जब हम यज्ञ करते हैं तो एक असुर आता है, एक राक्षस जिसका नाम है बलवल। यह बलवल असुर जो है इलवल नाम के असुर का पुत्र है और यह आकर बड़ा उत्पात पैदा कर देता है, आकर यह सारे यज्ञ स्थल को दूषित कर देता है और बड़ा हंगामा कर देता है। यहां पर हमारे यज्ञ काम यज्ञ स्थल सब गंदा हो जाता है, हमारे यज्ञ के कार्य बंद हो जाते हैं, तो आप इनकी हत्या कीजिए। तो बलराम जी ने कहा ठीक है। और जब अमावस्या का दिन आया तो उस समय अचानक उन्होंने देखा कि बड़ा तूफान आ गया। तूफान के साथ साथ बादल आए और वर्षा आई, अंधकार हुआ और उस अंधकार में से ये भीषण एक राक्षस प्रकट हुआ, बलवल। उसका शरीर बड़ा विशाल था, काला था, बड़े बड़े दाढ़ी मूछें थी, हाथ में अस्त्र थे और क्रोधित होकर आए और वहां दूषित करने लगे सारे यज्ञ स्थल को। और इतने ऊंचे थे कि आकाश में जैसे उनका उनके सर छू रहा था, गगनचुंबी शरीर था उनका। तो उस समय बलराम जी ने क्या किया, अपने हल और गदे को बुलवा लिया, तुरंत हल और गदा उनके सामने आ गए। परास शक्तिर विविधै वश्रूयते स्वभावे की ज्ञान बल क्रिया च, भगवान की इच्छा करने मात्र से ही उनके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो भगवान ने केवल इच्छा की कि हे गदा हे हल हमारे पास आ जाओ और आ गए उनके हाथ में। क्योंकि भगवान के जो सामग्री होते हैं वो भी जीव होते हैं जो कि भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की मुरली है, ये भी एक जीव है, भगवान की सेवा कर रही है मुरली का रूप लेकर। तो उसी तरह से बलराम जी के हल और गदा उनके सामने आ गए। तो बलराम जी ने उनका हल लिया, हल लेकर अपने हाथ को ऊंचा बढ़ाया, हाथ बढ़ता गया और फिर हल लेकर उस बलवल नाम के असुर को नीचे खींच लिया। नीचे खींच कर धमाक से उनके गदे से उनके सर पर प्रहार कर दिया और उस समय उनका सर फूट गया, खून आने लगा और उल्टी होने लगी खून की और धड़ाक से वो असुर नीचे गिरकर मर गया। और उस समय सारे जो ऋषिगण वहां उपस्थित थे तो वाहवाह करने लगे। ऊपर आसमान से देवी देवतागण और सिद्ध लोक चारण लोक विद्याधर लोक के निवासी फूलों की वर्षा करने लगे। जय बलराम की ध्वनि सारे जगह आकाश में सुनाई पड़ी और इस तरह सारे ऋषि मुनियों ने बलराम को आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से बलराम जी अपने तीर्थ यात्रा में आगे गए। फिर आगे चलते चलते जब वो वहां पहुंच गए गंगा सागर में स्नान किया, वहां स्नान करने के पश्चात फिर और नीचे गए दक्षिण की ओर महेंद्र पर्वत ने उन्होंने दर्शन किया परशुराम जी का। एक राम दूसरे राम से मिले, बलराम जी मिले परशुराम जी से। जैसे हम पहले बता रहे थे कि तीन राम हैं, कौन से हैं वो तीन राम, बलराम परशुराम रघुपति राम। तो बलराम जी और परशुराम जी मिले। रामायण में कथा आती है कि रघुपति राम और परशुराम भी मिले, लेकिन उस समय रघुपति राम ने परशुराम के साथ में युद्ध किया, लेकिन यहां पर बलराम जी ने परशुराम के साथ में युद्ध नहीं किया, उनको प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद की, कृपा की याचना की और फिर आगे चलते गए। आगे चलते चलते गोदावरी के तट पर पहुंचे, वहां तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया और फिर आगे महाराष्ट्र प्रांत में आए शैलापुर में, जो कि आज शोलापुर नाम से जाना जाता है। शैलापुर, जैसे दक्षिण भारत में शिवजी का तीर्थ स्थान है श्री शैलम, तो उसी प्रकार से शैला, श्री शैला, तो शैलापुर यहाँ है जो शोलापुर आजकल कहा जाता है। तो वहां पे गए और उसके पश्चात द्रविड़ देश में जाने की तैयारी करने लगे। बताया जाता है शास्त्रों में कि पश्चिम भाग जो है भारतवर्ष का उसे द्रविड़ देश कहते हैं, पंच द्रविड़। पंच द्रविड़ मतलब वहां पांच प्रांत हैं, और जो भारतवर्ष का उत्तर क्षेत्र है उसे गौड़ कहते हैं, तो इसे पंच गौड़। तो सारे वैष्णव संप्रदाय के बड़े आचार्य हुए हैं, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जयदेव गोस्वामी भी, श्रीधर स्वामी, शंकराचार्य, वो तो वैष्णव नहीं थे लेकिन फिर भी ये सब पंच, ये द्रविड़, पंच द्रविड़ में ये इन्होंने जन्म लिया। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ देश में, पंच गौड़ में जन्म लिया। तो खैर इस समय बलराम जी ने सोचा कि मुझे अभी द्रविड़ देश में जाना चाहिए तीर्थ यात्रा के लिए। तो श्री शैलापुर से नीचे होते होते पंच द्रविड़ के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान में गए, जिसका नाम है, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान कौन सा है दक्षिण भारत में? वेंकटाचला, बालाजी, तिरुपति। वहां गए, वहां भगवान जी का दर्शन किया, दर्शन करके फिर नीचे गए विष्णु कांची मंदिर में। विष्णु कांची के साथ साथ शिव कांची में भी उन्होंने दर्शन किया। शिव कांची से आए रंग क्षेत्र, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है विष्णु मंदिर, और वहां विष्णु जी रंगनाथ जी के नाम से विख्यात हैं। वहां रंगनाथ जी का दर्शन किया और फिर और दक्षिण की ओर चले, वहां मदुरई शहर में। मदुरई क्या है? दक्षिण भारत का या द्रविड़ देश का मथुरा है। तमिल भाषा में थ को त कहते हैं, तो मथुरा से नाम मदुरई हो गया, लेकिन है दक्षिण भारत की मथुरा। तो वहां पर गए और उसके बाद में नीचे सेतु बंध गए। सेतु बंध जहां से प्रभु रामचंद्र और वानर सेना ने सेतु या पुल बनाया लंका तक, और वहां पे बलराम जी ने 10,000 गाय दान में दिए। वैसे प्रथा है कि जब कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं तो दान करते हैं, लेकिन आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं रहे जो दान के योग्य हैं, और ऐसे विशाल हृदय के धार्मिक लोग भी नहीं रहे जो तीर्थ स्थानों में जाकर ऐसे दान करें। तो दोनों प्रकार के लोग ऐसे नहीं हुए हैं, लेकिन उस समय थे। तो बलराम जी ने सेतु बंध में ब्राह्मणों को गायों के दान का दान किया, और फिर नीचे चलते चलते कन्याकुमारी गए, जो जहां दुर्गा देवी का बड़ा मंदिर है, और वहां पे दर्शन किया, और वहां से चलते चलते फिर दक्षिण भारत में ही पास में विष्णु भगवान, संकर्षण भगवान का मंदिर है अनंत रूप में, वहां पे दर्शन किया, और फिर केरल देश में गए। केरल देश से होते हुए फिर ऊपर उत्तर की ओर आए गोकर्ण तीर्थ में, फिर ऊपर जाते जाते नर्मदा के तट पर तक गए। लेकिन इस यात्रा में शायद बेलगाम शहर से पास से गुजरे होंगे, क्योंकि गोकर्ण तीर्थ से अगर उत्तर जाना हो तो बेलगाम से ज्यादा दूर नहीं है, रास्ता कहीं बीच में ही लगा होगा। शायद बलराम जी आ भी गए होंगे थोड़े समय के लिए, थोड़ा यहाँ चरण कमल रख के भी चले गए होंगे। शायद यही वजह है कि इतने सारे भक्त यहाँ दिखाई पड़ते हैं बलराम जी की कथा सुनने के लिए, बलराम जी के भक्त इतनी बड़ी संख्या में आए हैं यहाँ पर। तो खैर बलराम जी ऊपर गए नर्मदा के तट में, वहां महिष्मतिपुरी नाम का जगह है, प्राचीन जगह है। आजकल ये जगह जो है अखबारों में बहुत पढ़ने में आता है इसके बारे में, वहां बंद है और बंद का काम चल रहा है इसके लिए, आजकल यही महिष्मतिपुरी खबर में, अखबार में आती है इसकी बात। तो इस प्रकार से नर्मदा तक पहुंचकर फिर वापस बलराम जी पहुंच गए प्रभास क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र से फिर से द्वारका आ गए। तो वहां सारे द्वारका के निवासी बड़े खुश रहे बलराम जी को देखकर, और उस समय उनको पता चला कि अभी युद्ध हो रहा है, और प्राय सारे क्षत्रिय जो युद्ध कर रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। तो बलराम जी ने सोचा अच्छा हुआ दुनिया का भार कम हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पापी लोग क्षत्रियों में ही थे, और भगवान तो इस बोझ को कम करने के लिए ही तो आए थे। भगवान के अवतार लेने का कारण ही तो यही था, दुष्टों का नाश करना। तो जब पृथ्वी का बोझ कम हो गया तो बलराम जी ने सोचा कि अच्छी बात है, लेकिन चलो जाकर देखते हैं कि रणभूमि में क्या चल रहा है। तो द्वारका से फिर बलराम जी ने यात्रा शुरू की, और जब वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो उस समय दो व्यक्तियों के बीच में धुआंधार युद्ध चल रहा था। कौन थे वो दो व्यक्ति? भीम और दुर्योधन। गदा युद्ध चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, ऐसे उनके गदे टकराते तो ऐसे आवाज आती, और दोनों बड़े चतुराई से एक दूसरे के मारे हुए गदे के प्रहार को झुककर उससे बच जाते थे, और इस तरह से दोनों नृत्य करते नजर आ रहे थे। लेकिन वास्तव में नृत्य तो क्या, एक दूसरे को खून पीने के लिए वो तैयार थे, और बराबर के थे दोनों। दोनों बड़े शक्तिशाली थे और बड़े लंबे समय से अति क्रोधित अवस्था में एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। तो बलराम जी जब वहां पहुंचे तो इस युद्ध को और भी सब लोग देख रहे थे। कृष्ण भगवान देख रहे थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, और इन सब के मन में विचार आया कि अब बलराम जी यहां क्यों आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि बलराम जी के हृदय में दुर्योधन के प्रति ही थोड़ा बहुत प्रेम है। क्यों? क्योंकि बलराम जी ने दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया था, और दुर्योधन वास्तव में बहुत ही निपुण बन गए थे गदायुद्ध में, प्रवीण हो गए थे गदा चलाने के कला में। तो इसलिए बलराम जी के हृदय में बलराम जी के लिए थोड़ा कुछ प्रेम था। तो इस बात को जानते थे कृष्ण भगवान और पांडव। तो जब बलराम वहां आए तो अंदर ही अंदर अपने आप में देखने लगे कि ये क्या हो गया, अब बलराम जी यहां क्यों आ गए। अब बलराम जी आए तो उन्होंने देखा कि दोनों बराबर हैं, भीम और दुर्योधन, इनका युद्ध तो चले जा रहा है, धुआंधार युद्ध हो रहा है। तो उन्होंने दोनों को उपदेश दिया कि देखो, आप दोनों मेरे बहुत प्रिय हो, आप दोनों गदा युद्ध में बड़े प्रवीण हो। जहां तक भीम का प्रश्न है, आप दोनों में से भीम की शक्ति ज्यादा है, बल ज्यादा है, लेकिन जहां तक गदा चलाने की कला है वो दुर्योधन में ज्यादा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा, ये तो समय की बर्बादी है। इसलिए मेरा सुझाव यही है, मेरी सलाह यही है कि आप दोनों युद्ध बंद कर लो और बात को खत्म कर लो। लेकिन दुर्योधन और भीम के हृदय में एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष था, मानो कि एक अग्नि जल रही है जिसको बुझाया नहीं जा सकता। दोनों की आंखें लाल लाल हो गई थी क्रोध से। दोनों के मन में एक ही विचार था कि कैसे दूसरे को खत्म किया जाए। जब बलराम जी भी आए, बलराम जी के कहने से भी दुर्योधन ने भी बलराम जी की एक नहीं मानी, और भीम तो कहां मानने वाले थे। तो दोनों ने अपने युद्ध जारी रखा, और उस समय दुर्योधन, बलराम जी ने सोचा कि क्या फायदा मेरा यहां रहकर, तो फिर से चले गए। फिर से द्वारका आए, प्रभास क्षेत्र गए। प्रभास क्षेत्र से फिर से वो नैमिषारण्य की ओर चले गए। नैमिषारण्य में जब गए तो अभी वो रिटायर हो चुके थे, अभी और कोई युद्ध वुद्ध के काम में वो नहीं शामिल होना चाहते थे। तो वहां तो यज्ञ चल रहे थे नैमिषारण्य में, तो सारे ऋषि मुनिगण ने देखा कि बलराम जी फिर से आए हैं लेकिन अभी रिटायर हैं, तो इसीलिए खुश हो गए सब। और आके उन्होंने बलराम जी का हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो वास्तव में शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि बलराम जी भी की भावना यही है तो और भी प्रसन्न हुए ब्राह्मण। उन्होंने अच्छी तरह से बलराम जी का अभिषेक कराया, जैसे कि इंद्र का अभिषेक देवता कराते थे जब इंद्र असुरों को हरा देते थे युद्ध में। और फिर बलराम जी ने वहां अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए, क्रियाएं किए, और फिर वहां उपस्थित ब्राह्मणों को बड़े अच्छे प्रवचन दिए, उपदेश दिए आध्यात्मिक विषयों के ऊपर। और उसके पश्चात अवभृत नाम का स्नान किया, और वहां से सारे ब्राह्मणों को आशीर्वाद देते हुए वहां से बलराम जी निकल पड़े। तो इस प्रकार से बलराम जी ने अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं की। बंदर बलराम जी ने धेनुकासुर और प्रलंबासुर का वध तो किया, मुष्टिक नाम के और अलग अलग कुश्ती जो करने वाले पहलवान थे उनका भी वध तो किया, ऐसे कई असुरों का वध किया। द्वारका में आने के पश्चात बलराम जी ने और एक असुर का भी वध किया था और उस असुर का नाम था द्विविद। द्विविद वास्तव में एक बड़ा बंदर था, वानर, गोरिला जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। गोरिला मतलब एक साधारण बंदर नहीं होता, बहुत बड़ा बंदर होता है, बंदर के समान, बंदर और मनुष्य के बीच का दिखने में आता है उसको। और ये मित्र था भौमासुर का, और भौमासुर मारे गए थे कृष्ण के हाथ, क्योंकि भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को काभरण करके छुपा लिया था, कृष्ण उनको मुक्त कर दिया था और भौमासुर का वध कर दिया था। और भौमासुर कौन थे वैसे? कृष्ण के ही पुत्र थे। देखिए, भगवान के पुत्र लेकिन इतने पापी निकले। तो इस प्रकार से भौमासुर का वध जब हुआ तो उनके मित्र द्विविद को बड़ा गुस्सा आया, और यह घटना तब हुई जबकि कृष्ण भगवान ने शाल्व, दंतवक्र और ऐसे असुरों का वध किया, पौंड्रक। और जब द्विविद को यह समझ में आया तो बड़ा क्रोध आया द्विविद को, और जहां भी जाता था यह द्विविद असुर, वहां जाके हंगामा कर डालता। सब जो गांव हैं, शहर हैं, सब जगह जगह जाके गौशाला हैं, वहां जाके सब आग लगा देता। आग लगाने के बाद में अलग अलग जाके जहां जहां आश्रम होते थे ऋषि मुनियों के, वहां जाके पेड़ उखाड़ डालता, बगीचे खराब कर डालता, यज्ञ स्थल में सब मलमूत्र डाल के उनको दूषित कर डालता, लोगों का अपहरण कर डालता। जैसे भृंगी मक्खियों का अपहरण करके वृक्ष के एक छेद में छुपा डालती है, उसी प्रकार से ये द्विविद नाम का असुर लोगों का अपहरण करके उनको गुफों में डाल देता था और गुफों के दरवाजे में बड़े बड़े पत्थर डाल देता था ताकि कोई बाहर नहीं आ पाए। और खास करके क्रोध द्विविद का कृष्ण भगवान के ऊपर था, क्योंकि कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था। तो कठवार प्रांत में, जो आज काठियावाड़ नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में जाके उन्होंने खास उत्पात किया। और वहां रैवतक नाम का पर्वत है, और उस पर्वत में बलराम जी का अपने नव युवतों के साथ में अपनी लीला कर रहे थे, और वारुणी नाम का जो जल है वो पी रहे थे, अमृत के समान जल होता है, वो पी रहे थे। तो उस समय द्विविद वहां आए और ऊपर वृक्ष में चढ़ गए, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरे से तीसरी शाखा, किला किला ना ऐसे आवाज करते थे, ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और ऐसे कठोर आवाज करके सारे रम्य वातावरण को नष्ट कर दिया द्विविद ने, ऊपर नीचे करते हुए। और वहां जो युवतियां थी इसके हरकत को देखकर हंसने लगी, जैसे अक्सर नव युवतियां करती हैं, कुछ भी चीज देखते हैं तो हंसने लगती हैं। और द्विविद को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, सोचा कि ये भी कोई साधारण बंदर है। लेकिन जब बलराम जी ने देखा ये तो नाक में दम बनकर बैठ गया है, यहां तंग करने आया है हमें, तो बलराम जी ने एक पत्थर फेंका द्विविद की ओर। द्विविद ने अपने शरीर को झुका लिया और पत्थर नहीं लगा। और उस समय द्विविद ने क्या किया, वारुणी का जो पात्र था वो छीन लिया, खुद पी गए और फिर बड़े नशे में आ गए। नशे में आकर बलराम जी के कपड़े फाड़ने लगे। उस समय बलराम जी ने सोचा कि अब तो ये हद के बाहर जा रहा है, और फिर सोचा कि ये द्विविद नाम के असुर ने कितना हंगामा कर रखा है सारे देश में। तो बलराम जी ने अपना गदा उठाया, और जैसे ही द्विविद को पता चला कि बलराम जी ने गदा उठा लिया है, तो उस समय द्विविद ने एक बड़ा वृक्ष वहां से उठाया और उठाकर सीधे बलराम जी की ओर आक्रमण किया। लेकिन बलराम जी ने उस वृक्ष को आसानी से पकड़ लिया और अपने गदे से प्रहार किया और द्विविद के सर को मार दिया, और वहां से खून बहने लगा। तो
बोल प्रोजे, हमका पहले का जो नाम है वो बेनुग्राम है, वो सच है? बेलगाम का जो पहले का नाम है वो बेनुग्राम है, सच है क्या?
बेलगाम का पहले जो नाम था वो
बेनुग्राम, ऐसे चैतन्य चरितामृत में
है, वेनुग्राम, वेनुग्राम हो सकता है, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। आप लोग बेलगाम के निवासी हैं, आप पहले बेलगाम का क्या नाम था? लेकिन वो बेलगाम शहर का ही नाम है या दूसरे का है, देखना बोले थे।